हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब तक जो कुछ भी वे लोग झलक के बारे में सोच रहे थे, वो सब धीरे धीरे ढहने लगा था। हवा का रुख बदल रहा था और सच सामने आने से पहले ही माहौल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हाँ, ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ लोगों का दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका था। वहीं दिग्विजय जी ने भी खुद से ये सारा दृश्य देखा, लेकिन तब तक आकांक्षा तुरंत झलक के पास आ गई और बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो झलक। तुमने आखिरकार मजबूर कर दिया मेरे सिद्धार्थ को अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सिद्धार्थ को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और तुम अच्छी तरह से समझ रही हो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो झलक के सामने आकर खड़ी हो गई। वहीं नैना गुस्से से झलक को घूरते हुए बोली, हमें तो शर्म आती है कि हमने तुम जैसी औलाद को पैदा किया। हमारी कोख से जन्म लेने के बाद भी तुम में 1% भी हमारा खून नहीं है। अपने आप को क्या समझती हो तुम? तुम्हारा बाप धोखेबाज था, वैसे ही तुम भी धोखेबाज हो। अब तो झलक के लिए सारी बातें सुन पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वहीं दादाजी को तो कुछ इस कदर गुस्सा आया कि उनका मन कर रहा था कि अभी के अभी बंदूक से सबको उड़ा दें। लेकिन झलक ने तुरंत ही उनकी ओर शांत नजरों से देखा और उन्हें शांत रहने के लिए इशारा कर दिया। वहीं आदित्य के सामने अब पूरी दूसरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। नीलामी के वक्त सिद्धार्थ के पास उसने एक नज़र आकांक्षा पर जरूर डाली थी, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान पूरी तरह से झलक पर था, इसलिए वो आकांक्षा को ठीक से देख नहीं पाया था। लेकिन अब उसके सामने सारे पत्ते खुल चुके थे और झलक को लेकर जो गलतफहमी उसके मन में थी, उसे अंदर ही अंदर अफसोस होने लगा था। अभी पहले इस तरह का ड्रामा देखकर रेस्टोरेंट के नौकरों ने जल्दी से उसके ओनर को फ़ोन कर दिया था और वहाँ का ओनर भी जल्द ही वहाँ पहुँच गया। आते ही उसने कड़क अंदाज में कहा, कौन है आप लोग? इस तरह हंगामा क्यों मचा रखा है आपने? अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाइए। जैसे ही रेस्टोरेंट ओनर ने आकर इस तरीके की बातें कहीं, तभी उसकी नज़र झलक पर जाकर ठहर गई। झलक को वहाँ देखकर वो थोड़ा रुक गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, अभी इस वक्त सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ, सिक्योरिटी जल्दी आओ। सिक्योरिटी वहाँ पहुँच गई और उसने कहा, इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनकर झलक ने उस रेस्टोरेंट ओनर की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हमें थोड़ा वक्त और चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही झलक ने ये कहा और रेस्टोरेंट ओनर ने गौर से उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट ओनर कोई और नहीं बल्कि उसकी अकेडमी में उसके साथ काम करने वाला गौरव था, जिसे झलक ने हराकर अकेडमी चैंपियनशिप जीती थी। जैसे ही उसने झलक की आवाज़ पहचानी, वो तुरंत उसके सामने झुक गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिए गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। जैसे ही झलक ने केवल अपनी आंखों से इशारा किया, वहाँ मौजूद सब लोग, जो अभी तक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और झलक को खरी खोटी सुना रहे थे, अब पूरी तरह से सन रह गए। सबके कान खड़े हो चुके थे। तभी गौरव की नज़र दूसरी साइड में बैठे दिग्विजय सिंह जी पर भी जाकर ठहर गई, लेकिन दिग्विजय जी ने अपनी आंखों के इशारे से ही उसे पूरी तरह शांत रहने के लिए कह दिया। वो किसी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहते थे। गौरव ने दिग्विजय जी की आंखों को अच्छी तरह पढ़ लिया था। आखिरकार एकेडमी में इतने साल रहने के बाद वो इतना तो समझ ही चुका था कि कब उसके बॉस किस बात का इशारा कर रहे हैं और कब चुप रहना ही बेहतर होता है। वहीं झलक ने तुरंत गौरव को देखकर कहा, मैं ये सब संभाल लूंगी, आप यहाँ से जाइए। गौरव जल्दी से एक बार फिर उसके सामने झुककर उसे अभिवादन करता हुआ वहां से चला गया। अब इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक को झलक के सामने झुकते देखकर सब लोगों की आंखें हैरानी से भर गई थीं। वहीं उर्वशी तुरंत तालियां बजाते हुए झलक के ठीक सामने खड़े होकर बोले थे, वाह, मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा चालबाज निकलोगी। यहाँ के मालिक को तुमने पहले से ही फंसा रखा था और हमारे सामने इस तरह का नाटक करवा रही हो, है ना? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो झलक, तुम्हारी किसी भी तरह की चालबाजी हमारा फैसला बिल्कुल भी नहीं डगमगा सकती। वैसे भी तुम्हारा सिद्धार्थ से तलाक हो चुका है, याद है ना? हॉस्पिटल में तलाक के पेपर हमने तुम्हारे मुँह पर फेंके थे। जैसे ही दादी ने इतनी घटिया बात कही, झलक का चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सिद्धार्थ और झलक के डिवोर्स का नाम सुनकर आदित्य के कान पूरी तरह खड़े हो गए थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, असल में उसका डिवोर्स भी हो चुका होगा और वो कभी सिद्धार्थ खुराना की पत्नी रह चुकी होगी। तभी दादी आगे बोली थी, अब एक बात और कान खोलकर सुन लो, तुम पहले भी सिद्धार्थ की जिंदगी में एक गलती बनकर आई थी और अब खुराना परिवार की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बहुत जल्द, जैसे ही हर साल की तरह बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हमारे बेटे को मिलेगा, उसी शाम ग्रैंड पार्टी में हम आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी भी कर देंगे। और ये हमारा आखिरी फैसला है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे ही दादी ने दांत पीसते हुए ये कहा, सिद्धार्थ ने भी आंखों ही आंखों में झलक को वही चेतावनी दे दी। फिलहाल झलक ने बड़ी शांति से एक नजर सबको देखा और एक कदम आगे बढ़कर दादी के थोड़ा करीब जाकर बोली, ऑल द बेस्ट मिसेस खुराना। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जब झलक ने सिर्फ ऑल द बेस्ट कहा तो सबके चेहरे फक पड़ गए। रणविजय ने दादी को पकड़कर कहा, दादी मुझे लगता है इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ अमीर लोगों को इसने क्या फंसा लिया, खुद को बहुत बड़ी मालकिन समझने लगी है। हमें वापस चलकर अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। झलक को घूर कर देखते हुए एक एक करके सभी वहां से जाने लगे, लेकिन आखिर में आकांक्षा रुक गई। आकांक्षा झलक के पास गई और उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए बोली, मेरी प्यारी सौतेली बहन, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी तुम्हारी जिंदगी में और बेइज्जती बाकी है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद तो लोग सुधर जाते हैं, लेकिन शायद तुम्हें बेइज्जती करवाने का ज्यादा ही शौक है। बस एक बार मेरी शादी सिद्धार्थ से हो जाने दो, उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी। ये बोलकर बड़े ही स्टाइल से आकांक्षा वहां से निकल गई। अब वहां मौजूद बाकी लोग, अभय, कबीर, दिग्विजय, आदित्य राणा, सभी इस पूरे तमाशे को खड़े होकर देख रहे थे। आकांक्षा झलक के बिल्कुल पास से नजाकत से बाल झटकते हुए बाहर निकल गई। सबके जाने के बाद दिग्विजय जी तुरंत झलक के पास आए और उसके कंधों को पकड़ लिया। आखिर दुश्मनों के सामने उनकी पोती अकेली खड़ी थी तो भला वो कैसे शांत रहते। झलक ने दादाजी की ओर देखा और कहा, आप परेशान मत होइए दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुद को संभालना अच्छी तरह जानती हूं। झलक की बात सुनकर दिग्विजय जी की आंखें भर आईं, उन्होंने अपनी पोती को सीने से लगा लिया। वहीं आदित्य, जो अब तक खामोशी से खड़ा था, इतनी सारी बातें सुनकर सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन झलक ने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा, अभी कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपने सब कुछ सुन लिया है, अब सच सबके सामने आ ही जाएगा। अब तो सचमुच सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था।
बलबीर हाथ जोड़ते हुए तुरंत दिग्विजय जी के सामने खड़े होकर बोले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि झलक की कोई हमशक्ल है, और अभय जिस लड़की की बात कर रहा था वो आकांक्षा थी, वो दूसरी लड़की है, वो तुम्हारी झलक नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जब झलक की शादी सिद्धार्थ खुराना से हुई थी तो फिर तलाक क्यों हुआ, आखिर हुआ क्या था? इतना कहकर सबकी निगाहें झलक पर टिक गईं। झलक ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें उठाकर आदित्य राणा की ओर देखा। अब शायद वो वक्त आ चुका था जब उसे अतीत का सच सबके सामने रखना ही होगा। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।